समीरा सो रही हो, गुस्से में हो। मोहतरमा, बैगन का सालन ठंडा हो गया है। मैं तुम्हारे लिए इस वक्त घर में आया हूं।
एहसान न जताओ, जाओ अपने काम पर, जाओ वहां जहां तुम्हें खुशी मिलती है।
तुम किस कदर बद अखलाक हो, मैं जिस राह से भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो बंद कर देती हो।
इंशाल्लाह एक अच्छी औरत तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें अपनी मुश्किल आसान कर देगी। मैं भी घर के इसी कोने में तलफ होती रहूंगी ताकि तुम्हें खुशी मिले।
उल्टी सीधी बातें ना करो।
ये उल्टी सीधी बातें नहीं है, ये तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है।
समीरा, तुमने मुझे तंग कर दिया है। मुझे इन हालात से अब घिन आने लगी है।
मैं तो कह रही हूँ ना, जाओ अपने काम पर जाओ, वहां तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें घिन नहीं आएगी, तुम्हें खुशी मिलेगी।
क्या हुआ है भाई, कश्तियां डूब गई हैं?
किस तरफ जाऊं, दाएं या बाएं?
इस तरफ से जाऊं। मुझे मोड़ से बहुत डर लगता है, दो रास्तों से घबरा जाता हूं, मुझमें जुरत नहीं। इस वक्त भी मैं एक खतरनाक दोराहे पर खड़ा हूं।
मैं समझता हूं, हम सबके सामने दो राहें हैं। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैंने 6 महीने के कोर्स की दरख्वास्त दी थी?
अच्छा, तो फेल हो गए इसलिए तुम्हारा मूड खराब है?
नहीं भाई, फेल हो जाता तो अच्छा होता। उस वक्त बिल्ली की तरह अपना सर नीचे करके काम पर जाता और वापस आ जाता।
पास हो गए
और क्या।
खैर चलो, एक अच्छी खबर सुनने को तो मिली।
अच्छी खबर? मैंने समीरा को नहीं बताया था और दरख्वास्त दे दी थी, क्योंकि मैं समझता था कि पास नहीं होऊंगा उसके सामने शर्मिंदा होऊंगा।
शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, तुम लोग मियां बीवी हो, क्या तुम लोगों के दरमियान ऐसी बात है?
हाँ भाई, अब जब डाक से मेरा लेटर आया है तो समीरा ने उसे मुझे दिखाया और कह रही है और गिला शिकवा कर रही है।
उफ, उफ। ये वो जगह है जहां अम्मी और बाबा मिला करते थे।
खास लोगों की मियादगाह भी खास होनी चाहिए।
मेरे बाबा ने अपना काम तहखाने में एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उस वक्त उनके पास एक पैसा भी नहीं था, उसी मौके पर उनकी मुलाकात हुई अम्मी से। जरा सोचो, उस जमाने में यूनिवर्सिटी अम्मी जाती थी।
अब तो जमाना बदल गया है, पहले की नस्लें बहुत अच्छी हुआ करती थी।
उस जमाने की नस्ल अहले दिल थी, वो अपने दिल की बात मानकर आगे बढ़ती थी, आज की मंतिक से मुबर्रा थी। अलबत्ता आज की मंतिक में किसी का साथ देना और किसी के काम आना बेमानी है, हत्ता अगर तुम्हारी शरीक हयात क्यों ना हो।
खुद गर्ज हो गए हैं।
जानते हो, मेरे बाबा बच्चों को बहुत चाहते थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरी वालदा माँ नहीं बन सकती, इसी वजह से उन्होंने अपनी मोहब्बत को फिदा नहीं किया और मेरे जैसे बच्चों की सरपरस्ती कबूल कर ली ताकि माँ अकेली न रहे।
इस तरह से वो उनकी तन्हाई खत्म करना चाहते थे।
हाँ,
तो फिर उनकी जरूरतें?
उन्होंने अम्मी की जरूरतों को तरजीह दी। ये वही काम है जो हमारी नस्ल नहीं कर सकती, यानी कम से कम मैं तो नहीं कर सकता।
मैं भी नहीं समझता कि अपनी जरूरतों को समीरा की जरूरतों से हम आहंग करूं। यानी अगर मैं ये काम करना भी चाहूँ तो मुझे घर बैठना पड़ेगा, झाड़ू करूँ, पानी करूँ, बर्तन करूँ, ये सब करूँ।
ये भी पहले वाली नस्ल और हमारी नस्ल का फर्क है, तवाजुन नहीं है, या इफरात है या तफरीत।
इस्माइल मैं संजीदा हूँ, समीरा से मैं तंग आ चुका हूँ, अब उसका यह रवैया ऐसा तो आइंदा 10 वर्षों में कैसा होगा। मैं उसकी वजह से अपनी तरक्की पर रोक नहीं लगा सकता, क्या मेरी तरक्की में खुद उसकी बेहतरी और अच्छाई नहीं है? तुमने सोचा कि मैंने ये सब भुला दिया? अगर तुम्हारे वालिदैन ना होते तो मैं 40 मीटर का घर भी नहीं ले सकता था। अगर मैं तरक्की ना करूं तो आइंदा मेरे पास कुछ नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक औरत होगी जो इसी में खुश होगी कि उसका शौहर उसके साथ रात का खाना खाता है, दिन का खाना
नहीं,
खाता
नहीं,
है।
नहीं,
यही है भाई, यही
बात ऐसी नहीं है। मेरी नजर में तुम्हें बात करना होगी, उसे अपनी बात समझानी चाहिए।
कैसे?
नहीं मालूम, मेरी जिंदगी भी इसी तरह से बर्बाद हो गई और आज भी यकीन जानो इसी मुश्किल में फंसा हुआ, लेकिन इस मर्तबा मैं ठोस फैसला करूंगा, या इस पार या उस पार। तुम्हारी मुश्किल भी सिर्फ तुम्हारे जाने से हल नहीं होगी, तुम्हें उसे ठीक करना होगा। फिर जल्दी आ जाना, रात का खाना साथ में।
परेशान ना हो। अच्छा ठीक ठाक, कपड़ा वपड़ा ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं?
हाँ ठीक है।
ओके। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
तुम्हारी तबीयत ठीक है?
हाँ बहुत अच्छी हूँ।
तुम्हारी तबीयत मज़ीद अच्छी हो जाएगी समीरा, तुम जैसा कहोगे वैसे ही करूँगा।
यानी तुम मुझे इतना चाहते हो?
हाँ भाई।
तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि तुम ऐसे दौरे पर जाने वाले हो।
हाँ नहीं बताया था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि पास हो पाऊंगा कि नहीं।
हाँ तुम्हारी नज़र में कितनी मेरी अहमियत है।
है क्यों नहीं है, इसी वजह से कहता हूँ कि मुझे तरक्की करनी चाहिए।
जाओ, मैंने मान लिया। ये क्या कर दिया तुमने?
मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा।
तुम जिंदा हो ताकि तरक्की कर सको, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ना जाओ?
मैं चाहता हूँ कि अपने काम में तरक्की करूँ और तुम्हारे साथ खुश रहूँ, ना ये कि तंगदस्त रहूँ और तुमसे शर्मिंदा रहूँ।
तुम जब शादीशुदा नहीं थे तब भी इसी तरह काम करते थे, बिला वजह मेरा बहाना ना बनाओ।
अगर मैं काम ना करता तो मेरे पास ये चंद सिक्के भी ना होते।
इस जिंदगी में तवाज़ुन नहीं है। मैं सख्ती बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे पास हो, उसकी सोच और उसका ज़हन।
अब तुम ये बात कर रही हो यानी दरअसल तुमने भूख का मजा चखा ही नहीं है।
तुम तो महज अपनी ही बात करते हो, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रही हूँ।
चलो तुम्हारी बात ही सही है।
कल जाकर ये चीज जो तुमने फाड़ी है ना, इसकी कोई दूसरी कॉपी वगैरह ले जाना और अपनी ट्रेनिंग का काम मुकम्मल कर लेना।
तुम समझ रहे हो क्या कहना चाहती हो?
जी हाँ जाहिर है, मैं जानती हूँ कि जब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तुम्हारा सारा ध्यान वहाँ होगा। एक घंटे के लिए भी घर आओगे तो मेरे पर नखरा दिखाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो खुश हो।
हम किसके लिए एक अहम मौका हाथ से खो रहे हैं?
जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरे पर कोई एहसान मत जताओ, ठीक है? सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
क्या हुआ, क्यों लौट आए?
मैं आपसे पूछता हूं कि क्या माजरा है। बाबा के कमरे की ये हालत क्यों है? किसी ने आकर कोई बात कह दी, आपने भी उस पर यकीन कर लिया, ठीक है, आपने उसकी बात मान ली, मेरे बाबा पर शक कर लिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, शायद मेरा ये काम गलत है।
खुदा का शुक्र करें आपने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। अम्मी, बाबा कोई मामूली आदमी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि पुलिस किस वजह से तहकीकात कर रही है ताकि मसले को हल कर सके?
पता नहीं।
पुलिस इस वजह से तगुदो कर रही है कि बाबा एक बड़े आदमी थे, बाजार में उनकी बड़ी इज्जत है और सब लोग उनका एहतराम करते हैं।
इस बात का उस औरत से क्या ताल्लुक है?
ताल्लुक है अम्मी जान, ताल्लुक है। हर बड़े आदमी के कुछ दुश्मन जरूर होते हैं।
खुदा की पनाह, खुदा की पनाह।
ये औरत नाहिद करीमी बाबा को पहचानती होगी, इस बात से भी आगाह हो गई होगी कि वो कोमा में, उन्होंने कहा कि बेहतरीन मौका है कि हम भी चलते हैं, कुछ अपना भला करते हैं।
नाहिद करीमी, तुम्हें उसका नाम कहां से मालूम हुआ?
आप ही ने बताया था।
नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया इस्माइल बेटे। तुम नाहिद करीमी को कैसे जानते हो? हाँ,
बाबा के हिसाब किताब में नाम था। आपने कहा था कि बाबा के रजिस्टरों को चेक करूं, उनका नाम मैंने वहां देखा। हर महीने बाबा उनके अकाउंट में पैसा भेजते थे। मैंने नासिर साहब से भी उसके बारे में पूछा तो पहले तो टालने लगे, लेकिन बाद में बताया कि लगता है कोई खातून है काशान में, वो गुड़ियां बनाती हैं। बाबा ने देखा काम अच्छा है तो हर महीने उनकी मदद कर दी। उसने भी गनीमत समझा मौका और हमसे जबरदस्ती पैसे लेना चाहती है।
अच्छा, यानी ये बात सिर्फ यहीं तक है?
और क्या अम्मी जान, वाजे है कि ये औरत धोखाबाज है। लगता है आप इन बातों से बेखबर हैं। जरा अखबारों, इंटरनेट पर नजर डालें, देखें क्या हो रहा है दुनिया भर में, देखें लोग किस तरह से एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं।
पता नहीं बेटा, पता नहीं। यानी क्या इस वाकये से बस इतना कह के आगे बढ़ा जा सकता है?
अम्मी, मुझसे एक वादा करें।
क्या?
आप खामखा ख्यालात में गुम ना हो। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि बाबा जल्द से जल्द होश में आ जाए।
इलाही आमीन, इलाही आमीन।
ठीक है अम्मी,
तुम सही कहते हो बेटा, मैंने गलती की है। शक ईमान की कमजोरी की अलामत है।
सब आपका इंतजार कर रहे हैं। फरोख साहिबा और सारा भी आए हुए हैं। खाना ठंडा हो रहा है अम्मी।
ठीक है बेटा, ठीक है। अस्तग़फिरुल्लाह, माबूद मुझे माफ कर दे।
हेलो
हेलो
फरमाइए
करीमी साहबा
जी हाँ
नाहिद साहबा
जी मैं खुद ही हूँ
देखिए मोहतरमा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ
उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थकी हुई थी आपकी बातों से मेरा मूड और खराब हो गया यानी मैंने आपको बात करने का मौका नहीं दिया मैं समझना चाहती हूँ
कि आपने वो बातें क्यों की मैंने आपको इस वजह से फोन किया कि अगर आपको पैसे या किसी और चीज की
आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं ये सोच रही हैं कि मैं कोई चोर और धोखेबाज हूँ या ये कि मैं मुर्तजा साहब का माल और पैसा हड़प करना चाहती हूँ सदका चाहती हूँ
जी नहीं मैं ये नहीं कहना चाहती खुदा न खास्ता आप पर गलत इल्जाम लगाना नहीं चाहती मेरी नीयत सिर्फ आपकी मदद करना है
मदद किस तरह की मदद
जी हाँ मदद
बस इतना समझ लें कि मैं हाजी साहब को सबसे ज्यादा जानती हूँ उन्होंने जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं छुपाया
हाजी साहिबा तो फिर मुझे भी पूरी तरह से बात करने दें
ना आप अपने शोहर को सही जानती हैं और ना ही वो आपको सही पहचानते हैं वो हमेशा मुझसे कहते थे कि उन्हें आप पर पूरा भरोसा है
जब भी कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो वो आपके पास जाते हैं क्योंकि आप इस कदर
बड़े दिल की हामिल हैं कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए एक बुजुर्ग का किरदार निभाएंगी
बच्चा
मेरा और मुर्तजा साहब का मैं हामिला हूँ आज साहिबा मुझे पैसे की नहीं
आपकी सपोर्ट चाहिए मैं तो सोच रही थी कि आप मेरी और मेरे बच्चे की सरपरस्ती करेंगी
हाजी साहिबा हाजी साहिबा हेलो हेलो
तुम्हारे तसव्वुर के बगैर मेरा दिल गोया सहरा और वीराना है लब खोल और दुरफशानी कर ताकि मेरी प्यास दूर हो जाए क्या हुआ जब तुमने यहां आने के लिए कहा तो मैं घबरा गया मैं सोच रहा था कि क्या कहना चाहती हो जो अपनी चार दीवारी में नहीं कह सकती है और उसको सुनने के लिए यहां आना जरूरी है
सुने मुर्तजा साहब ये मेरी और आपकी वादागाह है आपने अपना वादा भुलाया तो नहीं है ना यहां जो कुछ कहें वो दिल से निकली हुई बात होगी दिल तोड़ने के लिए नहीं है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जी हाँ मैंने सोच लिया है मैंने अच्छी तरह सोच लिया है आपको मेरी वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए यह आपका हक है कि आपकी नस्ल आगे
मलिहा मलिहा जान
आपको दूसरी शादी करनी होगी मैं खुद आपके लिए लड़की पसंद करूंगी जहां कहेंगे वहां रिश्ता लेके जाऊंगी जिसको चाहेंगे उसको लाऊंगी आपके बच्चों को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह बड़ा करूंगी
यहां बैठकर मेरे लिए क्या क्या बातें बना रही हो मुझे बोलने भी नहीं दे रही हो कि ये कबा जो मेरे लिए सी रही हो मेरे नाप की है या नहीं
नाप की है
मलिहा जान इन बातों को बात के लिए रखते हैं। देखो ये वही जगह है कि आसमान और जमीन एक दूसरे से मिलते हैं। उठो यहां से, उठो उठो, मुझे खाली पेट यहां खींच लाई हो। उठो, मेरी भूख कहीं मर ना जाए। चलो खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं। चलो उठो।
हाजी साहिबा, हाजी साहिबा,
सलाम वालेकुम मुर्तजा साहब। मैं आपको कुछ दिनों से देखने नहीं आई थी, पता नहीं आपने हमें याद किया या नहीं। मुझे तो आपकी याद बहुत आ रही थी, लेकिन मैं आज इस बारे में बात नहीं करूंगी। दिल तोड़ने का शिकवा लेकर आई हूं मैं, ऐसा दिल जो आपकी धड़कनों के साथ धड़कता था, लेकिन आपने उसे महरम राज न समझा, बेगानापन अपनाया। मुर्तजा साहब, हमने वादा किया था कि अपना है तो पैमान नहीं तोड़ेंगे। हाँ, मेरा दिल तोड़ दिया, उस दिल पर स्याह चादर डाल दी, सारे वादे भूल गए। उस दिल पर स्याह चादर डाल दी जिसे चौधरी का चांद कहते थे। अपनी मली से डर तो नहीं गए थे? मैंने तो बहुत पहले रजामंदी दे दी थी कि जाएं शादी कर लें, आपकी नस्ल आगे बढ़े। खुदा राजी है, खुदा का बंदा भी राजी है। आपने अपनी मली को महरम राज न समझा, वो अजनबी हो गई आपके लिए। आपने मुझे बहुत छोटा समझ लिया, मुझे आपने जलील किया है। एक अजनबी आया और मुझसे कहे कि मुर्तजा की बीवी हूं, ये बच्चा जो मेरी कोख में है वो मुर्तजा साहब का बच्चा है। उसने कहा था तुम जिंदगी भर हाजी मुर्तजा के साथ रही हो, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं। जैसा पहचानना चाहिए था वैसा पहचाना नहीं। मलिहा से ये बात कैसे कहूं कि वो इसे बावर कर ले। जहरा आलूद अल्फाज थे, लेकिन सच थे। मुझे यकीन हो गया, यकीन हो गया कि तुम मुझे नहीं चाहते थे। मुझसे झूठ क्यों कहा? मलिहा तुम्हारी महरम में राज नहीं थी। मली महरम राज नहीं थी, लेकिन ना ही थी। मैं अजनबी थी, मैं तुम्हारा चौधरी का चांद नहीं थी, ना ही थी।
ना ही तुम्हारी मोनिस थी, तुम्हारी गमखार थी, तुम्हारे बच्चे की माँ थी। मुर्तजा साहब मुझसे झूठ क्यों कहा, मुझसे झूठ क्यों कहा? मुर्तजा साहब मुझसे झूठ क्यों कहा?
क्या हुआ है?
क्यों मुझसे झूठ बोल?
हाजी साहब क्या हुआ है? अरे अरे मेरे खुदा, क्या कर रही हैं आप? ओ मेरे खुदा, जल्दी दें आप, बड़े मेहरबानी बाहर जाएं, आप जाएं बाहर।
वादा किया है निभाना ही होगा।
ये लीजिए, हमने गलती की, खुदा हाफिज।
अगर आप उनसे कहेंगी तो ना नहीं कहेंगी। तो राना साहिबा, कुछ हुआ है क्या?
आप क्या कह रहे हैं प्लीज?
लेकिन मैं जानती हूँ मलिहा के लिए बहुत अहम है।
उस वक्त जो आप कर रही थी वो गिला नहीं था।
कैसी बातें कर रही हो?